તારીખ 7/4/1991 શ્રી દ્રવદ્રષ્ટિ પ્રકાશ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 47.
उस भूमिका में उसका कोई निषेध करे तो ज्ञान दर्शन नहीं रहेगी, प्रतिभा नहीं होनी चाहिए, अपना वर्णन नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। जिस भूमिका में जिस राग घूमना वो होता ही है, क्योंकि राग की दशा में खड़ा है, पूरा विपरीत तो हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि करना सहज होता है वो बात है, करना दूसरी बात है, होता है दूसरी बात है। राग की क्या बात है, मुनिराज पर कोई उत्सर्ग करता है और सम्यक दृष्टि उसको देखता है तो उसको द्वेष आएगा। अगर इसको द्वेष नहीं आया उसकी भूमिका का त्याग हो जाएगा, इसलिए व्यवहार का स्थापन है कि जिस भूमिका में वो भाव होनी चाहिए उस भूमिका में अगर वो भाव नहीं होता है तो उस भूमिका का सहित त्याग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो करने लायक है और करना वो बात नहीं, वो आता है दूसरी बात है, करना दूसरी बात है, दोनों बात अलग अलग है। आया बिना रहे नहीं, बहुत सुना तो परमागम साहब ने ऐसे न्याय कोई न्याय ऐसा दिया है गुरुदेव के जाने में अच्छी तरह आई। असल में बात इतनी सी है कि इधर में जुड़ जाना चाहिए, त्रिकाली अस्तित्व में प्रसर जाना चाहिए, स्पष्टीकरण अस्तित्व में प्रसर जाना अर्थात परिणाम अंतर्मुख या स्वसन्मुख होकर अपने पूरे क्षेत्र में व्याप्त व्यापक भाव से स्वयं का स्वभाव अनुभव करना, उसी का नाम प्रसन्न कहो या जमना कहो। तो यह है उनको इन ग्रंथों में कैसे है, पकड़ना, ग्रहण करना, एकाग्र होना, लीन होना, प्रसर होना, प्रसर जाना, जम जाना, सब एक ही अर्थ में द्रवरूप हो गई क्या, ऐसा नहीं भाव की अभेदता अनुभव में भेदभाव नहीं रहा, ये द्रव्य है मैं पर्याय या मैं द्रव्य हूं वो पर्याय है, ऐसा भेदभाव नहीं रहा। फिर समाप्त हो गया, निश्चय महाराज जी को नहीं जाना तो इन महाराज जी को भी विपरीत ही जाना, इनमें गुरुदेव श्री को के भी प्रति जाना। मैंने यहाँ तो जो लोग बहुत पुराने हो गए थे उनको तो ये बात थोड़ा और चांट मारती थी, जैसे किसी ने चांटा मार दिया हो। निश्चय महाराज जी को मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, क्या तुम गुरुदेव ने नहीं जाना क्या?
दांत तो ठीक है लेकिन यहाँ तो कहते हैं विपरीत जाना। ज्ञानी की पहचान नहीं की।
हमारे परिवार व्यवसाय आदि को छोड़कर समुद्र में निवास कर लिया और हमने विपरीत जाना क्या? स्पष्ट कर निश्चय आत्मस्वरूप का अज्ञान होने पर देव शास्त्र गुरु का भी यथार्थ स्वरूप जानने में नहीं आता अथवा प्राय विपरीत जानना होता है। विपरीत जानने में तो ये बात आई बिना रहेगी नहीं कि इससे लाभ होता है, इनसे लाभ होगा, ये बात आई बिना नहीं रहेगी, ये विपरीतता आई जाएगी। गुरुदेव से लाभ होगा, भगवान से लाभ होगा, इससे लाभ होगा, आई जाएगा। शुरुआत वाले को अनुभव का कैसा प्रयत्न करना? तो मैं परिणाम मात्र नहीं हूं, त्रिकाली रूप में अपना प्रतिष्ठापन यही एक उपाय है। उपाय में दूसरा कोई उपाय नहीं है, स्वरूप में अपनापन करना ही एक उपाय है। आदि मध्य अंत में उपाय एक ही है।
जानने वालों
परिणाम मात्र में क्या है कि परिणाम में अस्तित्व बना रखा है। मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ इसका मतलब अस्तित्व उठा लिया, हूँ में अस्तित्व आता है। और त्रिकाली ध्रुव ने अपना प्रस्ताव देगा जानने वाला रह जाएगा। लेकिन त्रिकाली में अपनापन कर उस बात को रख करके त्रिकाली में तो अपनापन करे नहीं तो मैं जानने वाला रह गया तो कहां से आया? उनका हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं।
शुरुआत में कैसे अनुभव कर रहा
है? वो तो क्या है कि कोई बीजी पद्धति लेते ही नहीं थे, वो तो जो वो करते थे वो बहुत बहुत देते थे, दूसरी बात लेते नहीं थे। 250 में लिया है, 250 पर विस्तार से लिया है। आत्म प्राप्ति कैसे हो गई? अनुभव माने प्राप्ति नहीं अनुभव। इस विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछे गए प्रश्न का निश्चित उत्तर तुम्हारा। एक बात आएगी कि कहां से शुरुआत करनी है, तो रुचि से बात लिया है, रुचि और आत्म जागृति। यहाँ से रुचि, आत्म जागृति, चिंतन, ये सब बात रहेगी। विकल्पात्मक पर्याय में क्या करना, किसकी गुणता करना, पर्याय की गुणता कैसे करनी, सब बात का विस्तार कर लिया। एक जगह वो बात आई और बार बार ऐसा प्रश्न आ रहा है, बार बार इतनी लंबी बात नहीं करें, टिका लेंगे अपना कर दो। और जो हो रहा है वर्तमान अवस्था में, मैं कहा वर्तमान अवस्था में मैं परिणाम मात्र नहीं, एक भी परिणाम मैं नहीं, पूरा अस्तित्व नहीं है, उठा लो। ये सभी बातों का संक्षेप हो गया, टोटल हो गया।
विचार में भी शरीर का क्षेत्र मूर्ति को ताप है।
हाँ ठीक है, ये स्वरूप का जो विकल्प आता है उसमें भी शरीराकार जो चैतन्य मूर्ति है उसको ताप दो, तो विकल्प के साथ ज्ञान रहता है। राग और ज्ञान दोनों का मिश्रण को विकल्प कहते हैं अपन। तो ज्ञान में ऐसा टांग दो कि जैसे टांकी हुई चीज निकल रही, ऐसा चैतन्य मूर्ति को टांग दो
ज्ञान में।
विकल्पात्मक ज्ञान में भी शरीराकार जो चैतन्य मूर्ति आत्मा नहीं, शरीराकार है फिर शरीर बिना का, शरीराकार होते हुए भी बिना शरीर ऐसा भी है चैतन्य मूर्ति, इसको ये ज्ञानियों की भाषा ऐसी होती है कि उनके भाव तो हो जाने कि वो कैसे। तो जैसे ये अपने अंगूठी में हीरा मरते हैं, हीरा वो हीरा है और सोना है वो हीरा नहीं है, सोने की हो या कुछ भी धातु की हो, जितना उसका आकार है उतना ही बराबर फिट और फिट कर दिया है, फिर भी हीरा को देखेंगे धातु को नहीं देखेंगे। ऐसे बिल्कुल शरीर के साथ, शरीर एक डिब्बी है उसमें मर लिया है पूरा का पूरा, लेकिन जो चैतन्य मूर्ति चैतन्य ही रहे उसको टांको, उसको देखो ही नहीं, शरीर है वो दिखने में नहीं आता। एक चीज को टाग दिया इसका मतलब कि बगल में दूसरी चीज है उसको नहीं देखते, इतना ध्यान में लिया।
कल्पना
ये क्या वास्तविकता भी नहीं, जेनू जेतलो शरीर छे પોતાનું જેટલું શરીર છે એટલો ચૈતન્ય પણ નથી। આપણે શરીર પણ પોતાને જોઈએ છે, અહીંયા એમ કે છે કે શરીર જેવા જ આકારે માત્ર ચૈતન્ય મૂર્તિ તે હું એમ લાગવું જોઈએ, એમ લાગવું જોઈએ, ટાંકવાનો અર્થ એમ છે એમ લાગવું જોઈએ, વિકલ્પ વાળી સ્થિતિમાં પણ એમ લાગવું જોઈએ, શરીર ભિન્ન આત્મા ચૈતન્ય મુક્તિ ભિન્ન એવું લાગવું જોઈએ। ઇન્જેક્શન ને એક સરળ વ્યક્તિ इतना ही हमें क्या, एक पॉइंट जो सुई जितना है और लगते ही पूरा आत्मा वहां आ जाता है, है तो पूरा बड़ा क्षेत्र होने पर उतने में क्या आता है भाव में, तो कल्पना नहीं है क्या? इस वक्त ये कल्पना है, ऐसा क्यों नहीं आता है? ये तो ये चक्षु इंद्रिय से समझ में आवे ऐसी बात है कि इतना बड़ा शरीर होने पर एक जगह सुई लगती है तो पूरा क्षेत्र को भूलता है कि नहीं भूलता है? भाव में उतनी जगह में पूरा का पूरा अपने को महसूस कर लेता है, वो कल्पना नहीं है क्या? उसको तो कल्पना माने नहीं, वो जितना शरीराकार चैतन्य मूर्ति है उसमें कल्पना कैसे, वो तो वास्तविक है ही। थोड़ा प्रैक्टिस हुए बिना कितने भाव है वो समझ में नहीं आएगा। सन्मुखता का कितना प्रैक्टिस चले चलिए पता चलता है। अन्य मति में दूसरे परमेश्वर का ध्यान करते हैं, अभी तो जैन में भी ये चला है थोड़ा कि भगवान का ध्यान करते हैं, अपने बात निकाले थे, लेकिन अपना क्षेत्र से छोड़कर दूसरी जगह उपयोग को जाना, ये आत्मा के लिए अपने स्वभाव से अनुकूल नहीं है।
स्वभाव से अनुकूल नहीं
है, प्रतिकूल है, अनुकूल तो नहीं है, विरुद्ध है, प्रतिकूल है।
तो ये जो आप कर्म के निद्रा से आप परमात्मा याद रहती है, कर्म पर निद्रा तप त्याग से होगा,
तप कौन सा जो भी मानते हैं वो, या कोई उसका कोई दूसरा दाद है?
वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या है। आप मुझे बताया कि स्वरूप अपने देव
परिभाषा वही शास्त्र में आई है, उमा स्वामी का वो शास्त्र है, तपसा निर्दराज। वही उमा स्वामी कहते हैं कि तप किसको कहेंगे, कि एकाग्र चिंता निरोध हो ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध हो ध्यान, तो ध्यान को तप कहते हैं।
वो कौन सा ध्यान?
सिर्फ रोटी नहीं खा रहे उसको तप नहीं कहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में दूसरी सभी चिंता के अभाव में सिर्फ स्वरूप का ही अनुभव, एकाग्र रूप से रहे, यही ध्यान है।
स्वरूप को देखने का क्या तरीका कहते
हैं आपको? तो ये ग्रीक लैटिन जैसे लगेगी ये बात, तो क्योंकि ये तो विषय बिल्कुल प्रचलित विषय नहीं है हमारे समाज में, जैन समाज में ये विषय प्रचलित।
तो कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ने के लिए क्या लेना हुआ, कैसे जाना हुआ, स्वरूप को कैसे देखेंगे, क्या
जैसे कि बहुत सीधी सादी बात उतनी है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा देह स्वरूप नहीं और आत्मा राग स्वरूप नहीं, बस इतना संक्षेप प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में आ जाए तो
कोई आत्मा राग स्वरूप नहीं,
मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा में, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं तो मैं राग स्वरूप चिटिया, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, जो भी राग आता रहता है मुझे, मेरा ऐसा शरीर नहीं है, और जो ये शरीर आदि में मैं हूं ऐसा लगता है, ये भी मेरा स्वरूप, क्यों? दोनों का नाश हो जाएगा, आत्मा का नाश नहीं होता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा हमेशा ज्ञान स्वरूप रहता है, अनुभव में विपरीतता है उसको छोड़ना है, मैं राग स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव है, मैं शरीर रूप हूँ ऐसा अनुभव है, ये दोनों अनुभव मिथ्या अनुभव है, विपरीत अनुभव है और ये दुखदायक है। दुख होने का यही कारण है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान तो अपने को अपन को हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है तो मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसा अनुभव हो गया तो दुख नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और मेरा को सुख सुख शांति मिलेगी। बात तो उतनी संक्षिप्त वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, भले कुछ भी नए हमने, हम जब नए थे हमने इसी बात पर विचार किया, हम तो हमारे अनुभव से बात करते, हमने जब जैन ग्रंथ पढ़ा पहले पहले, इसके पहले तो जैन ग्रंथ नहीं पढ़ा था, तो उसके ये बात हमको थोड़ी गहराई में जाने की, कि जब ये ग्रंथकार ये कहता है ज्ञानी जो है कि भाई तो आत्मा है, आत्मा होने से तुम ज्ञान स्वरूप है, रागादि भाव जो आते हैं अनेक प्रकार के, मोह भाव, राग भाव, भाव भाव, विकारी भाव, तो तेरा स्वरूप नहीं है, तू ऐसा नहीं है। और ये शरीर रूप जो दुनिया सारी देखती है शरीर रूप, तो फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा भी तू नहीं है ऐसा कहते तो उनको क्या करना है, कि हमारा अनुभव ज्ञानी के कहने से विरुद्ध है। जब हम हमारा अनुभव को अनुभव से समझते हैं, विचार करते हैं वो बात नहीं लेते, हमारा अनुभव को जब हम अनुभव से समझते हैं तो हमको ये अनुभव आता रहता है कि जो राग होता है ऐसा राग करने वाला हूँ, ऐसा राग वाला मैं हूँ, किसी के प्रति राग किया तो राग वाला मैं हूँ, किसी के प्रति द्वेष किया तो द्वेष वाला मैं, पर शरीर वाला तो मैं हूँ ही, लोग भी मुझे ऐसा ही जानता है कि इतना लंबा है वो फलाना है, इतना ये छोटा मोटा है वो फलाना है, इतना दुबला है वो फलाना है, लोग भी मुझे ऐसे ही जानते हैं, मुझे भी ऐसा लगता भी है, लोग ऐसा जानता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे लोग मुझे कहता है कि भाई तुम तो स्वरूपवान हो, या तुम तो ऐसे हो, दुबले हो, या तो मोटे हो या छोटे हो, लोग भी ऐसा कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। अब ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा तू नहीं है, तो हमारा तो विरुद्ध अनुभव हो गया, ज्ञानी के कहने से तो विरुद्ध हो गया। तो ज्ञानी ने ये कहा कि तू ज्ञान सो, ज्ञान तो भी हमारा में हो रहा है, जब ज्ञान हमको हो रहा है तो हम ज्ञान स्वरूप है ऐसा क्यों नहीं मानते, और ऐसा नहीं मानने का क्या कारण है, और ज्ञानी कहते ऐसा माने तो हमें क्या आपत्ति है। जो वर्तमान जिस स्थिति में हमारी मान्यता है कि मैं राग वाला, मैं शरीर वाला, क्या इस मान्यता रखते हुए हम सुखी हैं कि नहीं है? जब हम सुखी नहीं है तो हम सुख के लिए किसी ज्ञानी के पास जाएंगे, क्या करें, हम तो दुखी है, हमें सुखी होना है, क्या नहीं है तो बात दे दी कि जिस स्थिति में तुम्हारी मान्यता है ये तुम्हारा दुख का कारण है। अब ज्ञान तुम्हें हो रहा है, तुम ज्ञान स्वरूप ही हो, हम जानते हैं, हम कहते हैं, हम जानकर कहते हैं, तुम्हारे में जो ज्ञान हो रहा है तो तुम्हें स्वयं को ज्ञान स्वरूप मानने में, स्वीकार करने में कौन सी आपत्ति है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं, बात तो भीतर की भीतर है, इतना हम स्वीकार करें और फिर स्वीकार करके हम चेक करें कि क्या इसे हमें सुख शांति हुई कि नहीं हुई। ज्ञानी ने कह दिया, लेकिन हम कहने से तो उतना हमको तसल्ली नहीं आएगी, ना विश्वास नहीं आएगा, लेकिन इनके कहने पर ऐसा फेरफार हमने जब कर लिया और हमें शांति हुई, सुख हुआ, तो हम मानेंगे कि नहीं। ज्ञानी जो कहते हैं वो सच कहते हैं, इनकी बात सत्य है। तो सत्य का स्वीकार भी हमें अनुभव से करना है, कहने से नहीं करना है किसी के, अनुभव से करना है। तो बात तो इतनी छोटी है, इससे लंबी बात नहीं है। फिर ये बात जो नहीं समझते हैं उनको समझाने के लिए किसी कितनी भी लंबी चौड़ी बात करनी पड़ती है, वास्तव में तो बात इतनी है। और हमारा जैन शास्त्र तो ये कहता है कि बात बहुत छोटी होने से मनुष्य ने ये तिरिंज जो मन वाले प्राणी है ना, वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति करके दूसरे भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। वही भाव में वो निर्वाण को नहीं पा सकते, लेकिन वहां के निर्माण से निकल करके वो मनुष्य होते हैं और फिर वो मोक्ष में चले जाते हैं। जब मनुष्य इतना कर, त्रिंच इतना कर सकता है, पशु पक्षी एक मेंढक भी इतना कर सकता है, एक सिंह, भगवान महावीर स्वामी किस भाव में धर्म की प्राप्ति किया है? आपको तो पुराण मालूम होगा कि अगले दसवें भाव में उसी के भाव में थे, इस वक्त उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ है। तो उनको भूख लगी थी और एक हरण को मार करके खाते थे, इसी वक्त कोई मुनिराज आकाश नामी विद्या वाले जा रहे थे, उनके नीचे ध्यान गए, विज्ञान से जाना, अरे इसी तो अभी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव है, अभी तीन चार स्थान है नीचे उतर, नीचे उतर को देखते ही वो चौंका, तो मुझे देख करके तो लोग भागते हैं, ये सामने आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, क्या बात है। उसको जिज्ञासा हुई तो ये जो मारने का गुस्सा था वो ठंडा हो गया, जिज्ञासा में आ गया,
स्वभाव में आ गया,
स्वभाव में आ गया और ज्ञान खुला रह गया कि ये क्या है। जिज्ञासा में क्या होता, ज्ञान खुल जाता है, अवकाश हो जाता है उसमें कि ये क्या। तो उन्होंने उनकी भाषा में, वो तो बुद्धिधारी बने थे, तो उनकी भाषा में संबोधन किया, ज्ञान प्राप्ति होगी। उसके पहले संस्कार नहीं था, देखो तो कुदरत क्या करती है। वहां तो त्रिंच को बिना संस्कार ज्ञान प्राप्ति हुए ही नहीं, कहीं भी उसने आत्म स्वभाव का संस्कार दिया हो, फिर परिणाम खराब हुआ हो, त्रिंच का आयु बाहर हो गया, त्रिंच गति में चला गया, संस्कार मतलब नाम ग्रहण कर रहे हैं अपने भाव में से, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव हो, उनको ये नहीं था। अगले के बहुत खराब भाव थे सब, इसके पहले वो नारके में से आए, से वही पहले नरक में थे और बहुत बार नरक में गए हैं, इतने इस चौबीसी में अभी का तो इतिहास मिल ही नहीं सकता, लेकिन उस जीव का इतिहास ऋषभदेव भगवान से चालू हुआ है, उनके पवित्र थे और उसका विरोध करते थे, जिनेन्द्र के प्रति वो विरोध करते थे, वहां से नरक में गए, बाहर निकले इंसेक्ट प्राणी हुए, फिर नरक में गए, बाहर निकले इंसेक्ट प्राणी हुए, कभी मनुष्य हुए तो जैन धर्म का विरोध किया है, फिर नरक में गए, बहुत बार गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी बार गए वो साथ नहीं, और नरक में से आए, इसी में नरक में से तो आए हैं, इंसेक्ट प्राणी हुए हैं, बस फिर कोई गड़बड़ नहीं।
व्रत करना या आत्मनिर्भर भूखा रहना, आक्रमण करना,
ऐसा है कि जिसको खाना नहीं मिलता है वो भी भूखा रहता है,
छह
छत जिसको खाना मिलता है वो भूखा रह गए और धर्म बुद्धि का विकल्प करे, इसलिए हम उसको व्रत कहते हैं। भूखा रहना व्रत नहीं है, भूखा तो जिसको अनाज नहीं मिले वो भी भूखा रहता है, लेकिन वो धर्म बुद्धि से खाने के प्राप्ति होने पर भी, घर में खाना होने पर भी वो नहीं खाता है, इसलिए हम
उपवास करते हैं या जो भी
उपवास कहते हैं,
उपवास करिए, उपासना करिए,
लेकिन उसको धर्म बुद्धि का विकल्प है इसलिए व्रत कहते हैं। वैसे तो तबीयत खराब हो गए, डॉक्टर मना करेगा नहीं खाना है तो घर में खाना है फिर भी नहीं खाएंगे, लेकिन उसको व्रत नहीं कहेंगे, उसको लंघन कहेंगे, तो उसको व्रत धर्म बुद्धि के हिसाब से कहते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि भूखे रहने से जो क्षुधा वेदना आएगी, ये तो शरीर का धर्म है, तो अपना जो परिणाम है वो आकुलित नहीं होवे तो धर्म बुद्धि सच्ची। क्या फिर से तो बचने का दो तरीका है, या तो दमन करो,
दमन
या उपशमन करो। जो उपशमन करते हैं उनको उपवास है, जो दमन करते हैं उसको उपवास नहीं है, ये बात है इसमें। तो यहाँ तक तो कोई विचार नहीं करते हैं, इसलिए उपशमन कैसे करना वो पता नहीं है, दमन कर लेते हैं और उसको उपवास नहीं होता है। जैसे ये भाई को बोल दिया कि तुमको ये चीज नहीं खानी है, बाजार में वो चीज मिलती है लेकिन तुमको नहीं खानी है, उनकी इच्छा होती रहती है कि मुझे ये खानी है, लेकिन उस पर दबाव है बिल्कुल नहीं तुम नहीं खा सकते,
प्रतिज्ञा का दबाव।
फिर क्या होगा कि फिर जब ये चीज खाने की मंजूरी मिल गई तो फिर क्या होगा कि वृत्ति तीव्र हो जाएगी। ये उपवास करने वाले अपना हमने यहाँ क्या करते हैं कि उपवास करने के पहले ज्यादा खा लेते हैं, कल उपवास करना है, शाम को अच्छी तरह खा के वो बैठा रहता है क्या, फिर भी उनकी साइकोलॉजी क्या खराब हुई है कि कल मुझे नहीं, कल मुझे उपवास करना है, बड़ा दिन है धर्म का, या पॉल्यूशन है या कुछ है, मुझे उपवास करना है, तो अगले दिन ज्यादा खाता है, फिर पारणा करने का आता है फिर और ज्यादा खा लेता है। तो वो वृत्ति का दमन किया इसलिए ऐसा हुआ कि जिसको दबाते हैं वो वास्तव में तो गई नहीं वृत्ति, उपवास इसलिए किया कि वृत्ति को खत्म करनी है, इस प्रकार के खाने के राग को मिटाना है। तो खाने का राग को मिटाया तो नहीं हमें, हमने उसको दबाया तो फिर वो जोर से उछला, ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है।
पालना जो करते हैं भगवान भजन पालना धागा जो करती है आगे कर देते हैं कर पालना वो ठीक है। हाँ वो भावना जो रहती है कर पालना करना खाना है, इच्छा रहती है खान, अब कल वो सवेरे और खान वो चीज ठीक है,
उसके परिणाम बिगड़े
हुए हैं, वो तो दमन
हो गया और परिणाम बिगड़ गया। तो परिणाम सुधारने के लिए प्रतिज्ञा व्रत होती है, वही साधन से हम हमारे परिणाम बिगाड़े तो बात तो उल्टी होगी, उसको व्रत कैसे कहेंगे। तो ये हालत वाली परिस्थिति संप्रदाय में ये परिस्थिति चलती है।
उपशमन कैसे हो?
ये बात अच्छा, ये बात समझने जैसे बात को ही है कि जैसा कि हमने पहले ये सोच लिया कि मैं शरीर रूप में नहीं, तो भूख लगना तो शरीर का धर्म है। तो शरीर में भूख लगी है, आत्मा में भूख नहीं लगती, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। भूख लगी इसे, इसका जो मैंने जठराग्नि प्रदीप्त हुई, गर्मी हुई अंदर में, तो गर्मी का ज्ञान हो सकता है, लेकिन मुझे हुई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं शरीर रूप नहीं हूं। तो ऐसा ज्ञान भाव में रहने से परिणाम आकुलित नहीं हुए
तब
उसको उपशमन कहते हैं। आकुलता समझावे, शांत हो जाए, उपशमन मैंने शांत होना, आकुलता का शांत होना। आकुलता बड़ा ना, दो अलग विरुद्ध बात है। पांच सौ सैतीस परिणाम प्रति के रस का यम का दूत जानो, एक ही टुकड़ा है। परिणाम प्रति के रस को यम का दूत जानो, स्पष्टीकरण। किसी भी प्रकार के परिणाम पर रस पूर्वक वजन जाता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, अर्थात स्वभाव प्रति का जोर नहीं आने का कारण बनता है। ऐसा एक परिणाम प्रति रस आता है, ये बहिर्तत्व होने से, त्रिकाली से बहिर्तत्व होने से, ये बाह्य दिशा में धसने का हुआ, और धसना है अंतर्मुख, तो विरुद्ध दिशा में जोर से चला गया, ये विरुद्धता होगी। इसलिए स्वभाव प्रति का जोर नहीं आने का ये कारण बनता है। संसार दशा में राग रस ही रहता है, यही अनंत संसार का कारण है। संसार दशा में तो कहें कि मुख्य तो राग को ही पकड़ता है, राग का एरस आता है, ज्ञान को श्रद्धान को तो जानता ही नहीं कि क्या ज्ञान है क्या श्रद्धान है। राग हर जगह, राग 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 सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, राग की दृष्टि में वो खड़ा है, तो राग ही दिखेगा, उस पर रस आता है। ये अनंत संसार का कारण है।
ध्यान करता है, उपवास करता है, अनंत संसार के कारण बनता है। ये ध्यान और उपवास अनंत संसार का कारण बनता है।
क्या ध्यान
करते हैं,
उपवास करते हैं, इसका ये कारण है कि ध्यान का राग और उपवास का राग उसका रस आया। एक उपवास नहीं कर रहा हम तो दस करेंगे, राग का रस आता है, अनंत संसार का कारण ही है। वो हम आए थे ना कलकत्ता लास्ट टाइम, तो वांचन करके ऊपर से नीचे आए, तो बाद में पूजा किया, पूजा करके थोड़ा देर लग गया, तो वैसे तो 8:30 से 9:30 तो वांचन हो गए, आधा पौना घंटा और लग गया, तो 10:30 हो गया। नीचे आए तो कुछ लोग सोए हुए थे मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ उद्यान स्थल है, कुछ लोग सोए हुए थे। अभी ये तो सोने का तो टाइम नहीं था, वरना तो प्रश्न नहीं उठे। तो 11 बजे को सोने का टाइम होता है क्या? 11:30 बजे हमने वैसे ही पूछ लिया, तो हमको पता ही नहीं था कैसा होता है क्या संप्रदाय में। तो 11:30 में लोग इधर सोए हुए थे हमें, तो भाई लोगों ने अपराध किया है। और कमजोरी आ जाती है और कहीं चैन पड़ता नहीं है। कमजोरी आती है, चैन पड़ता नहीं है, पढ़ने में रस नहीं है और कोई काम में धार्मिक क्रिया में कोई रस नहीं आता है, सो जाता है। अन्य मत में तो जुआ खेलते हैं। हाँ, हमारे वैष्णव में क्या हुआ है, खास करके ये जो श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है श्रावण वदाठम जन्माष्टमी, श्रावण अष्टमी के दिन उसका जन्म होता है 12 बजे रात को, क्योंकि वो तो जल में जन्म हुआ था ना, कंस के हिसाब से देवकी ने जो जन्म दिया रात को 12 बजे दिया तो सब सो गए थे, और वैसे वो विद्या कर लीजिए वो जो चौकीदार वगैरह थे सब पैर नींद गए, तो मंदिर जी में रात को 12 बजे कृष्ण जन्म का प्रसंग बने बताते हैं, फिर विंडो लाए ये सब चलता है मैम जिला में, तो 12 बजे तक करें क्या? और वो लोग तो क्या है कि दबके खाता है, पास रबड़ी खाया, पूरी खाया, वो खाया, वो खाया, फ्रूट खाया, तो पेट तो भारी हो ही जाएगा। अब रात को 12 बजे तक जगे भी कैसे, अभी तो टीवी आ गया, अभी तो पिक्चर देखने को भी जाते हैं लोग, लेकिन उस जमाने में न सिनेमा थे न टीवी थे, तास लगा बैठ जाते, रस आता है तो नींद नहीं आती है, अगर नहीं गोड़ तो नींद आ जाए, तो वो तास खेलने का ऐसा क्रेज हो गया कि अब तो जन्माष्टमी के एक अठौड़िया पहला से, एक हफ्ता पहले से घर घर में ताश लेकर लोग बैठ जाते हैं। और रात दिन का तो रस होता है, दुबार का तो रस को लाना नहीं पड़ता है, तो है ही आगे से तीव्र बंधन है, आठ दिन तो खेल नहीं खेलना। एक दिन तो मैं मुरली उन दिनों में ठहरा था, आया हुआ था, अभी क्या कि उन लोगों को रात को ताश खेलने को जाना था, कोई ट्रेन पे थे, आपको डिसीजन लिया होगा कि आज आपको इधर आना है, तो मुझे पता चले तो मैं तो थोड़ा कमेंट्री करूं, इसलिए पहले तो बैठे, उसे मारा तो 10 बजे करीब करीब सोने का टाइम रहता है, जैसे कि आप तो सोएंगे, मैं कहा हाँ सुना, मेरे बेडरूम में तो मेरे पास ही सोता है मोबाइल रूम पे, तो वो भी थोड़ी देर सोए मुझे दिखाने के लिए, मुझे तो वैसे जल्दी नींद आ जाती है, तो मैं तो सोया 10-15 मिनट में, तो मैं तो सो गया, फिर वो चले गया। क्या हुआ फिर रात को हुआ, वो तो सारी रात जुआ खेलते हैं सुबह 5 बजे नाइट, तो 11 बजे के बाद मैंने देखा कि अभी तो आधा पौना घंटा घंटा हो गया, बराबर नींद आ गई, अब तो जगने वाले हैं नहीं, फिर वो चला गया। रात को करीब 4 बजे इनका मजर का तबियत खराब हुआ, तो बाथरूम गए, बाथरूम से निकल के वहाँ गिर गए, तो फिर वो उनके वाइफ जो है लड़की है समझा गए, तो वो तो कुछ बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे, उनको एक दिन अंकने ने उठा करके उसका पलंग में रख दिया, तो उनको बढ़ा दिया, क्या हो गया तो थोड़ा मोटे आवाज से बोलने लगे, तो मैं भी जग गया, तो मैं जब गया तो कहा किधर है, उसकी तबियत इतना खराब हुआ है, डॉक्टर को बोला नहीं, क्या बोले ये डॉक्टर को बोला नहीं, मैं टेलीफोन कर लेना चाहिए, फैमिली डॉक्टर है तुम्हारे, तो मैं उधर गए हैं क्योंकि वो टेलीफोन नहीं लगा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एक बोल गया तो सबको एक दूसरे के सामने देख लिया। अच्छा फिर उनको टेलीफोन तो वहां लगाया जहाँ वो दुआ खेलते थे, उधर का तबियत सीरियस हो गया, तुम जल्दी से जल्दी आओ तो बाहर डॉक्टर के लेकर चाहेगा, या तो डॉक्टर को लेकर आया, मतलब गाड़ी लेके गया था तो डॉक्टर के घर में उसको उठा के लेकर आया। उसको तो पता नहीं था कि उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया है, उनको भी हो गया कि भाई को मालूम हो गया कि मैं सारी रात घर पर नहीं था, उनको तो देख सकते बोल गया तो मैं पसंद दिया कि क्या गड़बड़ी है। ऐसा रस होता है तो मैंने कभी क्या करते हो तो क्या है, हम आठम के दिनों में हमेशा नहीं व्यवहार करते, आठम के दिनों में ये करते हैं, इतना एस्केप कर लिया फिर कि आठ दिन हम लोग बैठते हैं हमेशा नहीं दुआ नहीं करते ऐसे। गुरु भी स्वभाव के अनायतन है, अनायतन है। वैसे तो जैन शास्त्र जैन आगम में ये बात आती है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अनायतन है और वीतरागी देव गुरु शास्त्र धर्म के आयतन है। उन्होंने ये कहा कि सच्चे देव गुरु शास्त्र वितरा के वो भी अनायतन है, किसके लिए, अपने स्वभाव के लिए, परिणाम को बाहर नहीं ले जाना है, परिणाम बाहर जाता है नियम से राग आता है, राग करने लायक नहीं है, जिसको वितरागता चाहिए उसको। यहां से तो विरोध चालू हुआ था, राम जी राय भिड़के यहां से और सब इनके साथ में हो गए, राम जी वाय खिमचंद वाय छोटा वाय चंदू भाई ब्रह्मचारी अरे वाय दूसरे तीसरे सब सब एक विरोध में आ गए कि दूरदृष्टि प्रकाश का तो प्रकाशन ही बंद करने की कोशिश किया था। गुरुदेव ने अपने हाथ से देने का बहुत विरोध किया, गुरुदेव ने बोला मैं अपने हाथ से कृष्ण ऐसे देने लायक नहीं है, ये लोग ये हालत होगी दूसरे की क्या हो मेरे तो मेरे पास मेरे सामने तो ऐसे बोले थे कि ससिभा ये 30-30 साल से सामने बैठकर सुनते हैं, 30 साल से उनकी ये हालत है,
क्या हुआ
ये हमारा विचार था। पिछले साल में क्या हुआ था कि बैजरी के वचन अंदर प्रवचन हुआ तो ये रास्ता खुल गया कि जिस निमित्त से गुरुदेव के निमित्त से जिसको ज्ञान हुआ उनके वचन पर गुरुदेव प्रवचन करते हैं तो फिर सुभाष जी के वचन पर क्यों नहीं। तो इसके पहले हमने क्या किया कि बांबलर में उसको संदेह चालू किया, सब को बहुत जचा, उसमें दसों बाल थे गुजराती तो गुजराती का इतना सुंदर कौन थे जोरदार जोरदार बताती है बहुत बढ़िया है पूछे सारी बंद करके करे कहा ऐसा करता है। फिर उसका गुजराती में रहता हूँ मुझे इसको उसे रकम भी देनी है ऐसा करके उनका तो भाव था वो तो गुरुदेव के पास बोल नहीं सके हम दोनों तो मैंने पूछ लिया सेकंड गुरुदेव खाना खाने को निकल रहे थे और उनके कमरे में गए करीब 5-10 बजे, तो देखे तो खड़े हो गए थे चलने के लिए तैयारी कर, लाकड़ी हाथ मार लिया। तो चले बोले नहीं क्यों, समय नहीं था बात समझने का, हम साथ साथ चले बाहर निकले, थोड़ा साथ चले समस्त के पास पहुंचे तो मुड़ करके देखा, उन्होंने देखा कि लोग साथ चल रहे हैं। उनका हमेशा ये रिवाज था कि जिसकी आहार की भावना है वो आए, दूसरे भी आए। क्यों? कि जिसके आहार की भावना है अगर दूसरे आएंगे तो उनको विवेक करेंगे, आप भी परोसो, तो इनके तो भावना में ये डिवाइड हो जाएगी ना बात, तो इसलिए करीब करीब दूसरे सुन नहीं जाते हैं, नया आदमी को जाए दूसरे की बात। तो देखने लगे तो समझ गया कि अच्छा हम क्यों चाह रहे, उनको प्रश्न हुआ है कि साथ में क्यों चलते हैं, तो खाना खाने जा रहे हैं फिर साथ में क्यों चल रहे हैं। फिर हमने सब बात जुड़कर बोल दिया, समझ में बड़ी की भावना है जो दृष्टि प्रकाश का तीसरा भाव गुजराते हैं है। तो खड़े रहेंगे फिर कुछ सेकंड मौन रहे, 10-15-20 सेकंड बोले नहीं, थिंकिंग विचार करेंगे और बराबर चेष्टा विचार की थी, तो विचार करते थे यहाँ करना या ना करना। फिर कुछ सेकंडों के बाद बोले अच्छा ठीक कर दिया, फिर विचार गुजराते हो गया है सबों के हाथ में मिलता है, अब गुरुदेव को उसको प्रवचन कर रहा है। पिछले 5 महीने में तबियत इतना खराब रहा, कोई चांस नहीं मिला, अगर टाइम मिलता तो इसके पर प्रवचन हो जाता, अगर इसके पर प्रवचन हो जाता तो बहुत निकलता है, ये भी है। ये अजमेर के शिविर में आया है, बस उससे पर तो काम चलता था मेरे हाथ में था, पहले जयपुर आया और दिवाली के लड़कों को ट्रांसन दे रहे तो 8-10 दिन वहाँ से ठहरा, फिर वो लग गए अजमेर का शिविर है 3 दिन आपको वहाँ आना है फिर आप जाना, तो उसको तो ही काम चलता था गुजराती का 80 में होगा, क्योंकि 81 में गुरुदेव का देहांत हुआ है, 81 में बाद में छपा, बाद में प्रवचन करा का विचार था, अगर प्रवचन चालू रहता तो रिक्वेस्ट करते। वैसे तो पिछले 3 साल से तबियत खराब हो तो रही थी, पिछले 4-5 महीने में तो काफी खराब है, अज्ञान में जीव वांछन श्रवण मनन आदि का जो पुरुषार्थ करता है उसमें तो थांक लगता है, लेकिन जिसमें थकान आवे वह पुरुषार्थ ही कहा, सहज पुरुषार्थ में तो बुरा लगता ही नहीं। एक आदमी को उपदेश करावे तो थक जाए आधा घंटा में, और श्वासोश्वास रात दिन चलता है, थकान क्यों नहीं लगती?
स्वाभाविक
है,
भजन कर
रहा है। यहाँ पुरुषार्थ का स्वरूप दर्शाया है, जो स्वर्ग पुरुषार्थ हो तो उसमें कभी थकान नहीं आती, बल्कि विकल्प की थकान अवश्य मिल जाती है। जैसे जीवों को श्वासोश्वास में कभी थकान नहीं लगती क्योंकि वह उनका व्यवहारिक जीवन यानी प्राण है, वैसे ही सहज पुरुषार्थ आत्मा का जीवन है, प्राण है, ये तो अतः उसमें थकान कैसे लगी नहीं।
स्पष्टीकरण है, तो प्राण के रूप में स्पष्टीकरण है, बहुत अच्छा है, स्वाभाविक क्रिया है।
ये विकल्प एक आदमी ने हमको पूछा क्योंकि हमको जब ये काम करना है, एक बात ध्यान में आई कि आत्मकल्याण करना है और इसलिए हमारा कारोबार बड़ा है, फिर भी हम अपना समय निकाल करके अन्य राज्य में जाते हैं, इधर आते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, सारा दिन इसमें व्यतीत करते हैं, या तो कोई संगठन को दूसरा काम है ही नहीं हमारा। प्रश्न ये है कि ऐसे करते करते हमको थकान आती है। जब हमने ये विचार किया कि ये करने लायक है इसलिए करना चाहिए, फिर इसमें थकान आती है, तो ये बात क्यों आ सकता है? ये आर्टिफिशियल है ना, इसकी शहर में नहीं आएगी। ये कृत्रिमता से हो रहा है, तो मुझे करना चाहिए इसलिए मैं करता हूँ, उसमें तो थकान आएगी। उस वक्त मैंने बोला कि श्वासोश्वास को थकान लगती है क्या? नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? शायद चलता है, बस शायद चले, इसमें थकान नहीं लगेगी। ये प्रिंसिपल पांच सौ इक्यावन सुनने में भी थका उल्लास नहीं होना चाहिए, दिन तो लगने चाहिए, खेद होना चाहिए। स्पष्टीकरण, मुमुक्षु की भूमिका में जिसको स्वरूप प्राप्ति की तीव्र लगन है, उसे स्वरूप की अप्राप्ति में सुनने आदि के भाव में भी असंतोष या खेद बरतता है। सुनते सुनते उनको प्राप्ति तो सुनते सुनते होती नहीं, तो उसको असंतोष होता है। जो संतोष में आ गया वो उल्लास में आ गया, असंतोष में आ गया वो आगे बढ़ेगा। पांच सौ पचपन त्रिपन में तो उतनी बात है कि पर्याय को अधिकता देने से विपरीतता हो जाएगी, प्रयोजन अन्यथा हो जाएगा। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है, और मैं भी सहज हूं। विकल्प में ऐसा मैंने कि मैं करता हूं तो होता है, नहीं करता हूं तो नहीं होता है, नहीं वो सहज है। निर्विकलता भी सहज आएगी, विकल्प भी सहज आएगा, और स्वरूप भी सहज ही है। ऐसा ज्ञान ज्ञान दशा में रहता है, परंतु अज्ञान दशा में विकल्प के कर्तृत्व पूर्वक विकल्प होता है, उसमें विकल्प के स्वकाल और सहजता का अस्वीकार हो जाता है। मैं करता हूं तो होता है, ऐसा कर्तृत्व आने से इसकी सहजता का और स्वकाल दोनों का अस्वीकार हो जाता है। दीर्घी चाहिए ना। 557 शास्त्र में ज्ञान करने का कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। स्पष्टीकरण, शास्त्र के उपदेशात्मक वचन पद्धति से चिंतन और विकल्प करने की कृत्रिम कार्य पद्धति बन जाना संभव है। अतः यहाँ ऐसे विप्रयास के प्रति ध्यान खींचा है कि स्वरूप लक्ष्य से चिंतन आदि सहज चले वही यथार्थ है, अन्यथा कृत्रिमता करने से तो कृत्रिमता में ही रुकना होता है। निष्क्रिय भाव कहने से जीव को पुरुषार्थहीनता लगती है, शून्यता। अरे भाई, वह स्वभाव तो पुरुषार्थ की खान है, और जो मुक्ति होती है उसकी भी उसको दरकार या अपेक्षा नहीं है। स्पष्टीकरण, मुक्ति पर्यंत के सर्व अपेक्षा की अपेक्षा ही छुप जाती है, कृतकृत्यता अनुभव गोचर होती है। ऐसा भाव स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ विषय में असमाधान नहीं रहता। मैं कृतकृत्य हूँ ऐसा भाव स्वयं पुरुषार्थ रूप है, फिर मैं पुरुषार्थ को दूसरा करने की बात उसमें आएगी, और किसी भी पर्याय की अपेक्षा तो होती नहीं रहती नहीं। 566 कितने लोग समझे बिना द्रव्य पर्याय नहीं है ऐसा ले लेते हैं, लेकिन पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है? दृष्टि का विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, इसमें पर्याय नहीं है, उसमें पर्याय का अभाव है, उसमें पर्याय।